वीर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येषीम् परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की दर्शन जब उत्पन्न होता है जीव को विवेक ज्ञान की उपलब्धि स्वतः हो जाती है। उससे पूर्व यानी विवेक ज्ञान की उपलब्धि होने से पहले जीवात्मा उसी ज्ञान के अभाव के कारण विवेक ज्ञान के अभाव के कारण दुखी था। हमको दुख देने वाला विवेक रहित ज्ञान ही दुख देता है। विवेक सहित ज्ञान सुख पहुंचाता है, सुखी बनाता है। ये ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही हमें संसारी बनाता है, ज्ञान ही हमें संसार से मुक्त कराता है। इतनी विशेषता आत्मा के भीतर होती है और इसी विशेष बात को हमें जानने की आवश्यकता होती है कि ज्ञान को समझे। ज्ञान क्या है? सारे कार्य सिद्धि ज्ञान से होते हैं। सारे दुख ज्ञान से होते हैं तो सारे सुख भी ज्ञान से होते हैं। ज्ञान ही तो सबका मूल है। ज्ञान जब अज्ञान में होता है उस समय वह परों को दूसरे को सर्वोपरि मानने लगता है और स्वयं को भूल जाता है। ज्ञान अपना ही है, दूसरे का तो है ही नहीं। पर अपना ज्ञान अपने को ही भुलाता है और पर को सर्वोपरि मानने लगता है। जब पर को सर्वोपरि मानने वाला होता है तब उसे उन्मत्त संज्ञा दी जाती है। पर को सर्वोपरि मानने वाला ज्ञान कैसा ज्ञान? उन्मत्त ज्ञान। उन्मत्त ज्ञान के पास उन्मत्तता होती है, विवेक नहीं होता। उस उन्मत्तता के समय में वह आठ प्रकार के मदों को करता है। ज्ञान ही मद करता है। किस किस का मद करता है? पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रुद्धि मद, तप मद और रूप मद। आठ प्रकार से यह उन्मत्त होकर के मद करता है। और जब मद करता है तो वह अपने को नहीं जानता, पर को जानता है। और ये जो कुछ भी आठ चीजें हैं ये पर हैं। ज्ञान, ज्ञान क्या है? स्वयं का है क्या पर का है? ये लेकिन जब ज्ञान स्वयं को जानने लग जाएगा, स्वयं को जानने वाला ज्ञान मद नहीं कर सकता। पर रूप जो ज्ञान है, यानी जो ज्ञान हमारा नहीं वह ज्ञान, उस ज्ञान को लेकर के ही मद होता है। देखो विशेषता कैसी है। केवल ज्ञानी मद करते हैं क्या? क्योंकि ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो गया। केवल ज्ञान अंतिम ज्ञान, नदी जब तक बहती है तब तक वो कहती है कि देख मैं कैसी बहती हूँ, कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ, मेरे जैसे कोई नहीं बहता और मेरे जैसी इतनी इतना बड़ा कोई नहीं है। बहती 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 नदी जब समुद्र में ढल जाती है तब समुद्र में ढलने के बाद भी क्या नदी ये कहती है कि देख मैं कैसी बहती हूँ, कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ। नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सागर बन जाती है नदी। सागर में ढलने के बाद उसका अस्तित्व कुछ भी बचता नहीं, और जब तक उसका अस्तित्व है तब तक वह आवाज करती है। कुत्ता जो है दूसरे की गली में जाए गुरगुर नहीं करता, बिल्कुल शांत है। अपनी गली में अपने घर के सामने अपने मालिक भी खड़ा हो तो फिर फुल चार्जिंग पावरफुल गुरगुर करता है। हमारी आत्मा में रहने वाला जो ज्ञान है वह जब तक अधूरा है तब तक वो गुर 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 करता है, पूर्ण होने के बाद शांत। पूर्ण बन जाए तो एकदम शांत हो जाता है, मद नहीं कर सकेगा वो। पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक का ज्ञान मद करेगा। मद करता है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। और चौथे गुणस्थान में चला जाए तो वह मद करना छोड़ देता है, क्योंकि उन्मत्तता उसमें नहीं होती। सम्यक ज्ञान उन्मत्त नहीं होता, بیوی کی ہوتا ہے. وہ انمتتا کیا ہے؟ انمتتا کا نام ہی ہے اجیان، متھیا گیان. اور سمیک گیان جو ہے انمت نہیں ہوتا، وہ اپنے کو بھی جانتا ہے اور پر کو بھی جانتا ہے. سو اور پر کو جاننے والا گیان انمت گیان نہیں کہلاتا. اس لیے ان آٹھ مدوں کو سمجھایا گیا ہے، جس کا گیان ان آٹھ مدوں میں رہتا ہے وہ سمیک گیان نہیں، اور جو ان آٹھ مدوں کو نہیں کرتا ہے وہ سمیک گیان کہلاتا ہے. تو کون کون سے آٹھ مد؟ گیان مد، گیان مد نہیں کرنا. جن کے پاس سب سے زیادہ گیان ہے، اپاٹ گیان، کروڑ پتی ہیں گیان سے، ارب پتی، کھرب پتی، وہ تو کبھی نہیں کہتے میں کیولی ہوں، سمجھے؟ ایسا نہیں کہتے، میں کیول گیانی ہوں، تو کچھ نہیں جانتا ہے، میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا چپ چاپ سن لے بیٹھ، کیول گیانی کہتے. جن کے پاس اتنا گیان ہے وہ مد نہیں کرتے، اور ہمارے پاس تھوڑی بھی بدھی آ گئی تو پھول جاتے ہیں، پھگے کے سامان پھول جاتے ہیں، اور زیادہ پھول جائے تو پھوٹ جاتے ہیں. گیان مد نہیں کرنا، بدھی ادھک ہے تو اس کا مد نہیں کرنا. پوجا مد، پوجا مد بھی نہیں کرنا. پوجا یعنی کیا؟ اپنی پوجتا یا کھیاتی کا مد، کھیاتی ہو تو اس کا مد نہیں کرتا. دنیا میں میں پرسدھ ہوں، سبھی لوگوں کی مانیتا میری ہے، کسی پد پر پرتشٹھت ہو جائے مد نہیں کرنا. میں تو سینئر ہوں، ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی جگہ ہے یہ ہوتا ہے. دھن آ جائے تو دھن کا مد ہوتا ہے، پد آ جائے تو پد کا مد ہوتا ہے، اور انہی بائے وستوں کے کارن سے ہماری پوجتا بڑھ جاتی ہے، کھیاتی بڑھ جاتی ہے، اس کھیاتی کا مد وہ نہیں کرتا. پوجتا یعنی کھیاتی، سبھی لوگ پوجتے ہیں، پوچھتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس لیے پوچھتے. کھیاتی کا بھی مد نہیں ہوتا سمیک درشٹی کے پاس. میں گائک ہوں، سمیک درشٹی گائک ہو تو میں گائک ہوں، ہم نے ریڈیو کاریکرم بھی دیے ہیں، ہم نے بہت جگہ گفٹ بھی لیے ہیں، سورن پدک لیے ہیں، یہ ایسے وچار آتے ہیں. اتنا وار وار دن کے وار دیوس آنے پر، میرا آج وار دن ہے، وار دن ہے، میں سب اتنا وار ہو گیا ہوں، 25 साल 30 साल वाड़ हो चुका हूं, इसलिए वाड़ दिन है आज। मिथ्या तो है ही, वाड़ दिन मनाना मिथ्यात्व भी है और मिथ्यात्व को वाड़ना मना मना करके। अपने ज्ञान पर हमें हंसी आना चाहिए तो वो छूटता है। अपने आप को पागल समझना चाहिए, क्या करता था और अब क्या कर रहा हूं, ऐसे विचार आने पर जीवात्मा के पास जो ज्ञान है उसमें जो उन्मत्तता प्रविष्ट हो चुकी है वो उतर जाती है। नशा है, वो नशा के कारण ही उन्मत्त होता है। कुल मद, कुल जो है पितृवंश से आता है, पितृवंश को कुल कहते हैं। तो पितृवंश श्रेष्ठ हो, आदर्श हो, तो उसी को लेकर के जीव मद करता है। हम अपने वंश परंपरा में ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हमारी परंपरा में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको लेकर के भी मद सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। जाति मद, अपनी माता के वंश का अभिमान करना, माँ की वंश परंपरा से भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है और उन्हीं को लेकर के घमंड आने लग जाए तो ऐसा नहीं होता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि माता के वंश परंपरा का भी मद नहीं करता, पिता के वंश परंपरा का भी मद नहीं करता। जो बात पहले पासून की होती है ना, पहले पासून कहते, वो मद ही तो है। जीव उस पर स्वाभिमान करता है कि पहले पासून हम ये करते आए, तो अनुकरण मद है ये। धर्म अनुकरण से नहीं होता, धर्म समझदारी से होता है। जो हम अभी तक अनुकरण किए हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, ये मद है, वो एक नशा है। उस नशा को उतारना चाहे तो उतर सकता है, नहीं सकता। उतारना चाहे तो उतर सकेगा क्या? नहीं। मद को, मद उतर गया तो पहले पासून कहना छोड़ देगा, ज्ञान आएगा तो औषधि है ना, सम्यक ज्ञान औषधि है। इस औषधि को पीते ही नशा उतर जाता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को ऐसी औषधि दें जो शराब के नशे को कम कर देता हो तो होश में आ जाता है, उन्मत्तता कम हो जाती है। सम्यक ज्ञान रूपी औषधि का सेवन करने से आठों प्रकार के मद कर ही नहीं सकता वो, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। कैसा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। ये जाति मद, वंश मद, अब बल मद, अपने शरीर बल का घमंड करना। शरीर भी निमित्त बनता है। अब शरीर पर है, पर वस्तु को लेकर के वह घमंड कर रहा। इसमें जितने भी बातें हैं वो सब पर हैं, पर को लेकर के ही घमंड होता है। स्व को लेकर के को कभी घमंड होता ही नहीं, केवल यानी अपने आप में प्रतिष्ठित हो गए, स्व को उपलब्ध हो गए, उनको कभी घमंड होता है कि देखो इतने ज्ञानी हैं, इतने सुखी हैं, इतने सारे देव उनकी सेवा करते हैं यानी भक्ति करते हैं, उनको कभी घमंड होता है? ये सब अपन को ही क्यों होता है? कभी विचार किया? अज्ञान के कारण, उन्मत्त होने के कारण, होश में नहीं है। और अज्ञानी जब ज्ञान का मत करता है तब देखो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया होता है, इतना ही है, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ। ज्ञान यदि बिल्कुल न हो तो मद नहीं करता, और बहुत हो तो भी मद नहीं करता। हिंदी में कहते हैं अध अध जल भरी घघरी, अध जल घघरी छलकत जाए, घड़े में पानी एकदम कम हो तो छलकता नहीं, बहुत भरा हो छलकता नहीं, आधा भरा हो तो उसको ले जाना भी मुश्किल पड़ता है, कंधे पर माथे पर उसको हाथ नहीं छोड़ सकते आप, खलक खुलक खलक खुलक करता है वो। इसलिए ये ज्ञान, अपना ज्ञान जो है ये अधूरा ज्ञान खतरनाक है। निगोद जीव मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में से एक अंश ज्ञान रखता है, बहुत अक्षर का अनंत व अंश का ज्ञान निगोद जीव के पास होता है, उसको कुछ पता ही नहीं बाहर का, क्या मद करेगा? इसका अर्थ मद रहित है ऐसा भी नहीं, मिथ्या दृष्टि तो है वो, लेकिन हम जैसे अपने ज्ञान का ये आठ प्रकार के मद बुद्धि पूर्वक करते हैं वैसे करने की ताकत नहीं, उसमें ताकत नहीं है। जल आधे घड़े तक भरा हुआ हो तो उसमें ताकत आती है बजने की, एकदम अल्प हो तो बजने की उसमें ताकत ही नहीं है। तो संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रियंश आदि के पास, देव आदि के पास जो ज्ञान होता है वह आधा भरा हुआ 50% ज्ञान होता है, केवली के पास जो ज्ञान होता है वो पूरा ज्ञान होता है, वो तो चरम सीमा का है, कुछ भी खाली नहीं। परंतु हम लोगों को जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये भी मद नहीं करता, ये भी पूरा माना जाता है। पूरा तो माना जाता है लेकिन केवल ज्ञान का ज्ञान नहीं माना जाता। हमारा घड़ा छोटा है, बजता नहीं, फुल पानी भरा हुआ है, वो तो सागर है, घड़े में समा नहीं सकते वो, उनका ज्ञान घड़े के भीतर रखा नहीं जा सकता, इतना है। पानी घड़ा में हो और बजता नहीं हो ये विशेष बात है, सागर में हो शांत हो ये कोई विशेष बात नहीं है, सागर अपार है कहाँ बजेगा, शांत ही रहेगा, उसकी लहरें लहरों की आवाज आती है पर वो कभी भी ऐसा ऐसा नहीं होता, कभी वो कूदता नहीं मैं ज्ञानी नहीं वो कूदता नहीं, घड़ा कूदता है, कूदते कूदते आपके सिर पर बैठता है, सिर पर बैठने के बाद भी गुड़ गुड़ करता है, खलबल खलबल करता है। सागर को सिर पर कौन रख सकता है? घड़े को तो सिर पर रख सकते हैं, सागर को कोई सिर पर नहीं रख सकता। घड़ा सिर पर हो और बजता ना हो, ये विशेष बात है। सागर बजता नहीं, ये कोई विशेष बात नहीं है, उसमें बजने की शक्ति नहीं है, बज ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो शिखर पर है, चरम सीमा पर है, बीच में है और नहीं बज रहा है, ये विशेष बात है। जन्मांध है, हो जन्मांध बीच में दिखने लगा उनको, ये विशेष बात है। जन्म से अंधा नहीं था और वो अंधा हो गया, पुनः दिखने लगा, ये कोई विशेष बात नहीं। जिसको जन्म से कुछ दिखता नहीं था और एक अकस्मात दिखने लगा, ये विशेष बात हो जाती है। अनादिकाल से हम निगोद में रहे, मिथ्या दृष्टि रही, हमारा ज्ञान उन्मत्त रहा, सुख दुख को नहीं जाना, जीवन मरण को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, और एकदम से जानने लग गया और शांत हो गया, एकदम आठ मदों को छोड़ बैठा, इसका मतलब पूर्ण हो गया ना। जिसके पास समय ज्ञान आया हुआ रहता है वह अशांत नहीं हो सकता, वह मद में नहीं हो सकता, वह मूर्छित नहीं रह सकता, वह विवेकहीन नहीं हो सकता, हर पल विवेक सहित चलता है। रुद्धि मद, शरीर मद ये है कि शरीर पर है, इसको जो नहीं जानता है वो शरीर मद करता है, मैं इतना बलवान हूं, देखो कृष्ण और नेमिनाथ दोनों भाई भाई थे, और नेमिनाथ भगवान के पास कृष्ण जी आए और नेमिनाथ भगवान ने कहा, तुम बहुत बोलते हो, बहुत प्रदर्शन करते हो, अपने आप को बहुत बलवान समझते हो, दुनिया में और आप जैसे कोई बलवान है क्या? नहीं। तो बेटा क्या भाई साहब, हम तो बलवान हैं, हमारे सामने तो अभी तक कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला तो मेरे पास आओ, ये लो मेरे हाथ की ये लास्ट वाली अंगुली, इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती, इसको पकड़ो, इसको मोड़ो। उन्होंने कहा, प्रयत्न किया, उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ लिया, उन्होंने मोड़ने का प्रयत्न किया, बिल्कुल नहीं मुड़ा, उन्होंने इसी अंगुली से पूरे कृष्ण को ऊपर उठा लिया। समझ गए, शरीर में शक्ति सब में होती है, लेकिन मैं शक्तिमान हूं ऐसा नहीं कहना चाहिए। शिक्षा दे दी उन्होंने कृष्ण को, नेमिनाथ भगवान ने, शरीर बल पर बल है, पर का बल है, ये आत्मा का बल नहीं, पर अपना नहीं होता, इसके ऊपर क्या घमंड करना, इसको लेकर के क्या खुश होना, ये पराया है। पर वस्तु को लेकर के मैं कहना ये अज्ञानता है। उनको शिक्षा मिली, लेकिन मन ही मन जरा जरा विकल्प हुआ। काय का विकल्प? इतनी इतना बल है इनके पास, तो कल के दिन क्या होगा मेरा? मुझे तो नीचे देखना पड़ेगा, मुझे तो इन्होंने ऊपर ही उठा लिया, मेरे से ज्यादा शक्ति इनके पास है, मालूम ही नहीं था मुझे। अब क्या होगा कल के दिन? इतना बल है तो कल के दिन ये राजा बनेंगे तो हमारी पूरी धरती को छीन लेंगे, हमारे राज्य को छीन लेंगे, परास्त कर लेंगे, ऐसे विचार आने लगे। और ज्यादा बलवान के पास, कमजोर बलवान क्या कहता है, कैसे विचार करता है? ये विचार करता है कि इनके सामने मुझे तो हमेशा ही नीचे देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना चाहिए। बस पॉलिटिक्स आ गया, राजनीति आ गई। मन में कैसे विचार आने लगे? ये तो तीर्थंकर तीर्थंकर कहते हैं लोग इनको, इनको तीर्थंकर तीर्थंकर कहते हैं, और बहुत ही सभ्य रहते, कुछ बोलते नहीं, किसी को कुछ गाली तक नहीं देते, बहुत मधुर बोलते हैं। ज्यादा हो गया, इधर उधर बहुत सभ्य हैं ये। इस सभ्य व्यक्ति को रास्ता बताना पड़ेगा, भोला है ये, इसको रास्ता बताना पड़ेगा। ये उस जिस रास्ते को मैं बता दूंगा वो निकल जाएगा, फिर हमारा साम्राज्य। क्या विचार किया? इसको फंसाएंगे एक बार, बोला है इसको एक बार फंसाएंगे, ऐसे फंसाएंगे फंस जाने के बाद लौट के ना आएंगे घर में। शादी रचाया नीमनाथ भगवान की, सबसे प्रथम व्यक्ति था कृष्ण कि नीमनाथ भगवान की शादी कब हो जाए, कब हो जाए, कब हो जाए, और शादी के मौके पर मैं इसको इस ऐसा पॉलिटिक्स खेलूं कि ये घर छोड़ देगा। क्या किया? शादी तो उनको करना ही था, ऐसा तो नहीं था कि शादी नहीं करेंगे, उनके भाव थे, करना है करना है, नहीं करना है नहीं करना है। तीर्थंकर तो ऐसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो शादी का प्रस्ताव रखते ही उन्होंने स्वीकार भी किया, निश्चित हो गया। लेकिन कृष्ण बहुत अच्छा मौका है, भाई साहब मेरे से ताकतवान है, अब इनकी ताकत कैसी चलती देखते हैं। बोला है ये अपनी ताकत के साथ सीधा निकल जाएगा। रथ में बिठाकर शादी की तैयारी हो गई, रथ यात्रा होती है ना, बारात किसको बोलते हैं, रथ में बिठाया। बारात ले जाते समय उन्होंने कहा, देखो आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं पूछना ही चाहता था कि ये क्या हो रहा है, तो पूछिए ना, पूछिए आप, हमको सब पता रहता है, सब शादी की व्यवस्था मेरे तरफ से ही हो रही है। भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप, तो हमारे लिए जब कभी भी सहायता ही पहुंचाई है, और आपको तो सभी जानकारी रहती है दुनियादारी की, ये क्या हो रहा है, इतने पशु क्यों बंधे हैं? तो ऐसा है कि आप जैसे महान आत्मा को तो तीर्थंकर हैं, अहिंसक हैं आप, वो तो बताना उचित नहीं, बताना उचित नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई इसमें पॉलिटिक्स दिख रहा है। क्या है ये, क्यों गंदे हैं? आप पूर्ण जानकारी रखते हैं, आप बताओगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो उतर जाएंगे। देखो, हमने कहा मत उतरो, मत उतरो, हम बता देंगे, सही जानकारी आपको देंगे। तो क्या है ये, मलेच्छ खंड से राजा लोग जो आएंगे वो भी आपके शादी में आना चाहते थे, निमंत्रण उनके लिए भी दिया गया है, शादी में आने वाले हैं, लेकिन वो तो शाकाहारी है ही नहीं, वो तो सभी मांसाहारी, और उनके योग्य उनका आहार की उनके आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है, यही बात है और कुछ नहीं। समझ गए वो, बस मेरी शादी की वजह से इन पशुओं की हत्या हो रही है, मैं शादी करूंगा ही नहीं, राजा आएंगे नहीं, शादी होगी नहीं, वैराग्य हो गया। बस वो मन ही मन खुश हो गए, कौन देखो भोला, देखो भोला निकल जाएगा अभी, मुझे मालूम ही था ये दयालु है, भोले हैं, इनको कोई आशा नहीं रहती कभी भी, ये निकल ही जाएगा, निकल ही गए, उतरे, भाई साहब मैं शादी नहीं कर रहा हूं, इन जीवों की रक्षा करूंगा, मैं अगर शादी करूंगा तो ये मरेंगे, और नहीं करूंगा तो मरने का सवाल नहीं उठेगा। अब वैराग्य हो गया, रथ से नीचे उतर आए और निकल गए, जंगल का रास्ता पकड़ लिया, जूनागढ़ के पास बारात गया था, गांव के बाहर ही उन्होंने देखा इतने पशु बंधे हैं, स्वीकार नहीं किया, इन पशुओं को छोड़ो पहले मुक्त कर दो। कृष्ण ने क्या किया, जाकर के तुरंत उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया, आदेश मान लिया, सारे पशु बंधन से मुक्त हो गए, इधर ये जंगल चले गए। और कृष्ण को रोकना तो चाहिए था, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, जरा आंसू तो बहना चाहिए था, चार बूंद आंखों में, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूँ और आप निकल गए, नहीं चुपचाप खड़े जाने दो, उनको इतना ही करना था, अपने से शक्तिमान व्यक्ति को सामने देखना नहीं चाहते थे वो। हाँ देखो, उनका भी ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, नेमनाथ भगवान का भी ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, एक के पास इतना बल हो करके भी सात्विक ज्ञान है, और एक के पास इतना बल हो करके भी सात्विकता नहीं है, हालांकि वो मिथ्या दृष्टि नहीं थे, कौन कृष्ण, परंतु पॉलिटिक्स चौथे गुणस्थान वर्ती पॉलिटिक्स कर सकता है, करता भी है, क्योंकि असंयमी है वो, असंयमी, असंयम किस गुणस्थान तक होता है, पांचवे तक होता है, असंयम पांचवे तक होता है, चौथे में भी असंयमी होता है, चौथे गुणस्थान वर्ती देश चला सकता है, सैनिक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सम्यक दृष्टि से राजा बनेगा तो देश का उद्धार होगा, लेकिन छोटी मोटी बातों में वह स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी उतर सकता है, उतारू हो सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसका भाई बाहुबली वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अब शक्ति उनकी ज्यादा हो गई, ये चक्रवर्ती होकर के इनकी शक्ति कम पड़ गई, हारना पड़ रहा है, तो ये सहन कर नहीं पा रहे हो, कैसे सहूं। दोनों भाई भाइयों में युद्ध की बातें आ गई क्या नहीं, यहां तक कि उनको चक्र भी चलाने के भाव हो गए। चक्र तो गला काट देता है, ये भाव आ गए तो भाव हिंसा तो हुई। हाँ वो मद तो नहीं है, वो उसको मद नहीं कह सकती। शायक सम्यक दृष्टि के पास आठ मद नहीं होते, उसको मद संज्ञा नहीं दे सकते, मद नहीं है वो। पर ये है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं अपना अस्तित्व बचा रहा हूँ और मेरी शक्ति नहीं चल रही है, तो अपने पास अंतिम जो शक्ति थी, साधन था, उसका भी प्रयोग करने के भाव आ गए। क्या चक्र रत्न को छोड़ता है वो, जब शक्ति नहीं चलती, सारी शारीरिक शक्ति से हार जाते हैं तो चक्र रत्न का सहारा लेते, छोड़ देते। और उनके ध्यान में ये नहीं आया कि भाई है, भाई तो समझ रहा है, लेकिन ये चक्र रत्न भाई के ऊपर चल नहीं सकता, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, सोच नहीं पाए और वो छोड़ दिया। और वो चक्र रत्न जाकर के तीन प्रदक्षिणा देकर दाएं तरफ खड़ा हो गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मैं आपको संहार नहीं कर सकता, पधारिए। चक्र रत्न भी प्रदक्षिणा देकर के एक तरफ खड़ा हो गया, तो वो देखता रह गया, चक्रवर्ती देखता ही रह गया, ये ऐसा कैसा कर रहा है, इसने भी मेरे को हरा दिया। अंतिम शक्ति थी, सुना था कि जब मैं सारी शक्तियों से हार जाऊंगा, ये मुझे जिताने का अंतिम शक्ति है, और ये भी प्रदक्षिणा देकर के विनय करके खड़ा हो रहा है उनके सामने, अब मेरा क्या बचा, बस मन ही मन अपमान अपमान हो गया, छोटे भाई से बड़े भाई का अपमान हो गया, और छोटे भाई को ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, मेरा राज्य मेरा था, स्वाभिमान के साथ मैं जी रहा था, मैं उनके सामने क्यों झुकूं? ये चक्रवर्ती हैं तो रहे, अपने घर में रहे, मेरे घर के सामने क्यों आ गए? ये भाव। और चक्र रत्न कह रहा है कि दुनिया में एक भी राजा जब तक बचेगा आपके जीतने से, आपके आज्ञा मानने से शेष बचेगा, तब तक मैं आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर सकता, और ये मैं जब तक प्रवेश नहीं करूंगा तब तक आप चक्रवर्ती घोषित नहीं हो सकते। भरत चक्रवर्ती तभी घोषित होंगे जब वो चक्र रत्न अपने स्थान पर पहुंच जाए, फिर प्रजा जयकारा लगाती है, चक्रवर्ती महाराज की जय, चक्रवर्ती महाराज की जय घोषणा करती है। पर जब तक वो अपने स्थान पर आती नहीं, आता नहीं चक्र रत्न, तब तक तो घोषणा नहीं होती, ध्वजा पहरा नहीं सकते। तो चक्र रत्न अंदर न जाते हुए जब उन्होंने देखा अभी क्या कम रह गया, छह खंड का अधिपति मैं हूँ और पांच खंडों को तो जीत करके आया, मृच खंड पार खंड में कौन बच गया ध्यान में नहीं आया। तो कहते ये एक राजा बच गया, बाकी सब आपके शरण में आ गए, आपको कहीं भी लड़ना नहीं पड़ा, मृच खंड में कहीं नहीं लड़े आप, सभी पहले से ही तैयार थे स्वागत के लिए राजा लोग, ये राज आपका, और हमारे देश में आकर के हम धनी हो गए और साथ में कन्याओं को भेंट में दे दिया, रत्न वस्त्र आभूषण देकर के सत्कार किया, सेना का सत्कार राजा का सत्कार हर जगह हुआ मृच खंड में, कोई भी विरुद्ध होकर के खड़ा नहीं रह पाया। चक्रवर्ती का नाम सुनते ही उनकी शक्ति उनकी सेना उनकी संख्या उनकी ताकत ये सब सुन करके युद्ध करने का साहस किसी ने भी नहीं किया। सब लोग तो शरण हो गए थे, अब आर्यखंड में आ गए, अपने ही देश में कोई विरुद्ध राजा अभी बचा हुआ है, तो कौन है वो? बाहुबली। बाहुबली अपने स्वाभिमान पर अड़ा है, पिता के द्वारा दिया गया राज ये मेरे लिए दिया है, इस पर किसी का अधिकार नहीं, मैं अपना स्वतंत्र जीऊंगा, ये भाव। पिताजी अगर हमको बांटते न थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पिताजी ने तीर्थंकर वो करके उन्होंने दिया और ये इस पर अधिकार किसका चल सकता है, लेकिन इनको चक्रवर्ती बनना तो तभी संभव जब तक के ऐसा कोई एक राजा रहा है। सभी उनके अन्य जो भाई थे वो सब पहुंच गए चक्रवर्ती के पास, बाहुबली नहीं पहुंच रहे। इनको स्वाभिमान था और कुछ नहीं, घमंड था अभिमान था ऐसा भी नहीं, स्वाभिमान अपने संपत्ति पर अपना स्वाभिमान किसका अधिकार क्यों, स्वाभिमान था। लेकिन चक्रवर्ती ठीक है तुम्हारे पास स्वाभिमान है लेकिन मैं तो चक्रवर्ती हूं ना, जब तक तुम नहीं आओगे चक्ररत्न मेरी बात नहीं मान रहा है, चक्ररत्न मेरी बात नहीं मान रहा है, वो आयुशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है, अब उसके वजह से उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। चार मंत्रियों को भेजा मनवाने का प्रयत्न किया, विफल हो गए, विफल हो गए, मंत्रियों को जवाब दे दिया उनको यदि राज चाहिए है तो मेरे पास आ जाए, मेरे पास ही आ जाए। वो वहां पर बैठे बैठे क्यों बोलते मेरे पास आ जाए, मंत्री लोग तथास्तु लौटे कदम जाकर के बताया वो आपको ही बुलाते हैं, ऐसा तो आपको ही बुलाते हैं तो वैसा चक्रवर्ती जाता नहीं, जाता नहीं है, किसके शरण में कौन जाए, भेंट देने के लिए सभी राजा लोग चक्रवर्ती के निकट जाते। 32 मुकुटबद्ध राजा मृच्छखंड के वो सारे के सारे भेंट दे करके शरण में आए, वहां लड़ाई की बात ही नहीं हुई, दिग्विजय इस तरह से रहा, सुखमय रहा, 8000 वर्ष तक घूमते रहे, कोई शत्रु एक भी नहीं निकला, उनके वैभव को उनकी सेना को उनकी ताकत को सब सुन करके ही युद्ध को स्थगित कर देते थे, युद्ध करना ही नहीं, अपने को शांति के साथ रहना,
अच्छा चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए आया है तो क्या इस देश पर अपना प्रभुत्व रखेगा, ले जाएगा कोई संपत्ति हड़प के ले जाएगा, क्या करेगा? कुछ तो नहीं करता, आपको तो इतना ही कहना है कि राज आपका है, बस हो गया। आपकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए चक्रवर्ती को, अपना देश कुछ भी नहीं ले जाएगा ये। लेकिन कहना क्या है, ये देश आपका है। इतना कहने पर कोई खून खराबा नहीं, युद्ध नहीं, कुछ नहीं। और चक्रवर्तियों का पुण्य इतना होता है कि कहीं भी वो किसी के राजा पर हमला नहीं करते, करना ही नहीं पड़ता। स्वतः अन्य राजा लोग शरण में आते हैं, कहीं एक भी युद्ध नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं मरता उनके युद्ध में। दिग्विजय जाते समय 60,000 वर्ष तक रहा, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। अहिंसक युद्ध इसको कहते हैं। युद्ध होना प्रारंभ होता है कहां पर, उसके अपोजिट में हम खड़े हो गए तो युद्ध प्रारंभ होता है। खड़े नहीं होना, और जो आ रहा है वो हड़प करके जाने वाला हो तो चिंता की बात है। जैसे एक राजा आया था, कौन है? सिकंदर, बिल्कुल सिकंदर राजा। देश में जितनी संपत्ति, जहां जहां प्रवेश करता था, लड़ाई करता था, वहां की संपत्ति को भी अपने देश के लिए ले जाता था। वो चक्रवर्ती ऐसा कुछ नहीं करता, सिर्फ उनके सामने आना और इतनी ही बात स्वीकार कर लेना कि आप इस भारतवर्ष के 6 खंड के अधिपति आप ही हैं, ये खंड हमारा है, पर ये हमारा आपका है और आपका हमारा है, हम दोनों मिलकर के रहेंगे, हम आपके परिवार के हैं, बस हमारा अलग से अस्तित्व कुछ नहीं। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, मिलकर के रहेंगे, मिलकर के जिएंगे, कोई अपना अपना अस्तित्व अलग अलग नहीं रहेगा, हम आपके परिवार के हैं, बस इतना निवेदन करो। चक्रवर्ती आगे बढ़ता है। चक्रवर्ती क्यों गया था? युद्ध करने के लिए नहीं गया था, सारी दुनिया को अपना परिवार बनाने गया था, सारे लोग अपने हैं बस, और जो मैं अपना बनाने के लिए आया हूं और अपना नहीं होना चाहता तो उनको मैं पूछने का अधिकारी हूं, क्यों नहीं बनना चाहता अपना? तेरी संपत्ति जा रही है, तेरा धन जा रहा है, तेरा परिवार जा रहा है, क्या जा रहा है तुम्हारा? तेरा कुछ भी ले जाने के लिए मैं नहीं आया, तुझे इतना ही कहना है कि तुम्हारे परिवार का मैं हूं। हाँ मंडली, नहीं मद नहीं आता, वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, मद नहीं करते, स्वाभिमान करते हैं अपने उस पर, संपत्ति पर। हाँ, संपत्ति पर स्वाभिमान रख सकता है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि लड़ सकता है अपने राज के लिए, कोई आपत्ति कर रहा हो तो लड़ सकता है, परंतु घमंड नहीं करता। घमंड मिथ्या दृष्टि को होता है, वो ठीक है,
यहाँ पर जन्म के साथ सभी मानव है, मानव जाति में जाति भेद नहीं होता, ये म्लेच्छ है ये आर्य है ऐसा कुछ नहीं। म्लेच्छ आर्य बन गया तो अपना जाति का हो गया, जाति का राग द्वेष नहीं रहता चक्रवर्ती को, सम्यक दृष्टि है वो। म्लेच्छ खंड से बहुत सारे लोगों को लाए थे वो, पर वो आर्यवत हो गए। आर्यवत हो गए, सब शाकाहारी हो गए, सब धर्मात्मा बन गए, सम्यक दर्शन धारण करने लगे। तो ये क्या कह रहा था, परिवार बनाने के लिए निकलता है चक्रवर्ती, युद्ध करने के उनके भाव रहते ही नहीं, पर इतना ही है कि कर्तव्य है छह खंडों में विहार करके आना। हाँ जाएंगे ही नहीं है तो फिर दिग्विजय नहीं कहलाएगा, इस दिशा में गए इस दिशा से आए, जाना तो पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा। तो सेना को दल बल सहित हाथी घोड़े सेना पैदल सेना 84 लाख हाथी 84 लाख घोड़े इतने होते हैं, और पैदल सेना बहुत बड़ी सेना होती है, जाते हैं लेकिन कहीं भी युद्ध नहीं करते, अहिंसक युद्ध होता है। अहिंसक युद्ध का मतलब ये है कि अहिंसक युद्ध उसी का नाम, आप अपने हैं ये समझ करके चलना, और सामने वाला भी वो जो आ रहे हैं वो युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए हमारे देश में भेंट देने आ रहे हैं, भेंट देने, ये समझ करके ये उनके निकट जाते हैं और वो इनके निकट आते हैं। तो कौन पहले जा रहा है, ये आ रहे थे क्या, नहीं आ रहे थे। जाना किसने प्रारंभ किया, चक्रवर्ती ने। स्वार्थ किसका है, चक्रवर्ती का, लेकिन उनके देश में जाने के उपरांत वो सामने आ जाते हैं सीमा पर, हाँ कि स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये उनका, हाँ उनका सत्कार है, वो पहले से सुन लेते हैं सब समाचार, इतनी सेना इतने घोड़े हैं इतने हाथी हैं इतना चक्ररत्न है, सब सुन करके हाँ ये तो चक्रवर्ती ही है, और हम पांच खंड के सारे राजा लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं चल सकता। तो सभी ये तय कर लेते हैं चक्रवर्ती का स्वागत करने चलो, और चक्रवर्ती करता है कि मैं तुम लोगों को युद्ध करने नहीं आया हूँ, तुम लोगों को अपना बनाने आया हूँ। ये अहिंसक युद्ध कहलाता है, किसी व्यक्ति को मित्र बना लिया तो तुम जीत गए, युद्ध किया और शत्रु बना करके लौट गए तो तुमने जीता नहीं, तुम हारे हारे लौट आए, हार गए तुम, अगर मित्र नहीं बन पाया वो तो हार गए। राम रावण से लड़े, युद्ध किए, आखिर क्या हुआ, वो नहीं मान रहे थे इसलिए उनको मरना पड़ा, पर क्या उसके राज्य पर उस अपना प्रभुत्व जमा करके लौटे, उन्हीं का भाई जो विभीषण था उनका राज उनको ही सौंप दिया उनने, और उस विभीषण को परम मित्र बना लिया, मित्र तो पहले भी था और अभी भी रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा हमने जीता है तो ये इस राज पर मेरा कुछ प्रभुत्व नहीं रहेगा, ये तुम्हारा ही राज है, इसको छीनने नहीं आया था मैं तो केवल सीता को लौटाने आया था, मनवाने आया था आप लोगों को और सीता को छुड़ाने आया था, इस राज्य पर कोई मुझ मेरा मोह नहीं, आशा नहीं, ये तो तुम्हारे बड़े भाई का ही राज्य था और उन्हीं का रहेगा और उनके नाम से तुम उन्हीं के भाई, तुम ही राज्य करोगे और तुम ही उसका अधिकारी हो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। विभीषण को बुला करके उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। इतने आदर्श विचारों को देखकर सुनकर विभीषण के आंखों में आंसू बहने लगे। कितने महान हैं राम, कितने महान हैं। ऐसा कोई राजा होता है? सिकंदर आया और संपत्ति लूट के ले चला गया मारपीट करके, पीछे दुश्मन होके बैठ जाते हैं। ये हमारी संपत्ति छीनने का अधिकारी कौन है, ये ऐसे कहते हुए बैठ जाते हैं। दुखी बना करके चले जाना ये कोई दिग्विजय नहीं कहलाता। जहां जाते हैं उनको सुखी बना करके लौटना, ये असली दिग्विजय, वो सच्चा राजा। एक राम, एक भरत और ये जितने भी 12 चक्रवर्ती होते हैं, अहिंसक युद्ध करते हैं। राम अहिंसक है, हिंसाभूत हो गई, चाहते थे क्या इतनी बड़ी हिंसा? करोड़ों लोग मरे होंगे उस समय, करोड़ों लाखों लोगों की खून खराबा हुआ होगा, पर चाहते थे क्या वो? नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हुए भी ये हुआ, करना पड़ा। वो न्याय पर जब अन्याय का आक्रमण होता है तब न्याय क्या करे? चुपचाप बैठे, सहन करे? अहिंसक कह करके चुपचाप कांक मीच करके बैठे? नहीं। अन्याय का साम्राज्य अगर फैल रहा है तो न्याय भी खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए, पर हिंसा के उद्देश्य से नहीं होता है वो, उसके दृष्टि में अहिंसा ही होती है, हिंसा नहीं अहिंसा ही होती है। अब अन्याय, न्याय को ही खत्म करना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्याय भी कहता है मैं मरूंगा लेकिन अन्याय को खत्म करके रहूंगा। तो न्याय का अन्याय के साथ भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत, उतनी ही बल खड़ी हो जाती है शक्ति, दोनों लड़ते। और इसमें आखिर हार कौन जाता है? अन्याय हार जाता है, न्यायवान जीत जाता है। मान के चले न्याय पक्ष में बल कम पड़ गया और वो हार गया, लेकिन वो हार नहीं मानी जाती, वो जीत ही है, उसका हार भी जीत है। क्यों? न्याय के पक्ष में है इसलिए। कुछ भौतिक ताकत कम पड़ गई मान लो, और भौतिक ताकत की कमी के कारण से अन्याय जीत गया, तो अन्याय क्या न्याय बन गया? अन्याय न्याय नहीं बना, अन्याय सदा ही मृत माना जाता है, मरा हुआ ही है वो। व्यक्ति के जीवन में अन्याय आते ही वो मर जाता है, और मरा हुआ व्यक्ति किसी को जीत नहीं सकता, वो जिंदा ही नहीं क्या जीतेगा। अब भौतिक बल पर, भौतिक ताकत पर भले ही अन्याय, न्याय पर आक्रमण कर लिया, न्याय का शोषण किया, लौट गए, तो क्या न्याय हार गया? अन्याय जिंदा है, अन्याय पहले से ही मृत है। मृत होने का नाम हार, और न्याय का जिंदा रहने का नाम जीत। और इसके बीच में जो लड़ाई होती है वो ताकत मानी जाती है। ताकत के कम ज्यादा होने से हार जीत का न्याय नहीं होता। कौन न्यायवान है, कौन अन्यायवान है, इस पर हार जीत होता है। अच्छा, न्याय जीत गया मान लो, इसके उल्टा सोचो, न्याय ने अन्याय पर आक्रमण किया क्योंकि उसका अन्याय दूर करने के लिए करेगा, अन्याय दूर करने के लिए आक्रमण किया और उसकी भौतिक संपत्ति, भौतिक ताकत उसको क्षीण कर दिया, न्याय के पास चला गया पूरी ताकत। अब बचा वो अन्याय, पहले से ही मरा हुआ है। अब भी न्याय कहता है तुम्हें न्याय का प्राण डालने आया हूं। देखो, न्याय का प्राण डालने आया हूं, न्याय का दान देने के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए पुनः जिंदा करने के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए मारने के लिए नहीं आया हूं। ये भौतिक ताकत जो अभी तुमसे हमने ले लिया है, छीन लिया है, वापस दे दूंगा, परंतु जिंदा तो हो जाओ। क्यों मरते हो, कायर हो क्या? न्याय के मार्ग से नहीं चल पाना ये सबसे बड़ी कायरता है, और अन्याय को ही भौतिक ताकत के बल पर जिताने का प्रयत्न करना ये भी नपुंसकता है। असली युद्ध न्याय धर्म का होता है। तुम हमें धर्मात्मा बनाने के लिए आ जाते तो हम तो पहले से ही धर्मात्मा थे, हमको क्या बनाने आओगे? हमको यदि अधर्मात्मा बनाने के लिए तुम आ रहे हो तो तुम जिंदे ही नहीं हो, पहले से ही मृत हो। और ऐसे मरे हुए लोग धर्मात्मा के साथ क्या लड़ेंगे? इनकी भौतिक संपत्ति और जाएगी, चार धर्मात्मा और मरेंगे, हानि होगी। इसी को अगर जीत समझते हो तो तुम्हारा ज्ञान उन्मत्त है, बुद्धिहीनता है। तो ये असली जीत नहीं, धर्म से जीतो, न्याय से जीतो, न्याय के लिए लड़ो। अन्याय के लिए लड़ते हो नपुंसक हो, मुर्दे हो, उन्मत्त हो। उन्मत्त ज्ञान मरा हुआ ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जिंदा ज्ञान। सम्यक ज्ञान न्याय के लिए लड़ता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी न्याय को बचाने के लिए लड़ते हैं। और इसमें हार जीत क्या चीज है? हार जीत क्या चीज है? सम्यक ज्ञान अंतिम समय तक सम्यक ज्ञान ही रहे, ये जीत है। और वहां पर युद्ध के समय में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, ये हार है। धर्मात्मा जब दूसरे की ताकत से लड़ता है, भौतिक ताकत से, तो बाहरी युद्ध है। असली युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच में होता है। अधर्म धर्म से लड़ता है, धर्म अधर्म से लड़ता है। ये असली युद्ध है। ये असली युद्ध के लिए जो लड़ता है वो राजा कहलाता है आदर्श, वो धर्मात्मा राजा। चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा, राम धर्मात्मा राजा, कृष्ण कृष्ण के ऊपर शंका उठती रामायण काल धर्म का काल माना जाता है, धर्म युद्ध है वो। महाभारत का युद्ध, इसमें कुछ धर्म दिखाई नहीं देता लोगों को, यहाँ अन्याय ज्यादा है। ये न्याय पर अन्याय का आक्रमण था, न्याय पर अन्याय का आक्रमण, ये पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था ये इस धरती पर चतुर्थ काल में, अन्याय पर न्याय का आक्रमण, न्याय को धुतकारना, भगाना, वनवासी बना देना। क्यों? हम बहुसंख्यक हैं, बहुमत में उन्मत्त ज्ञान वाले, कौरव सभी उन्मत्त ज्ञान को धारण करने वाले, पांडव सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले, और लड़ाई इन दोनों की थी, और पार्टनर थे कृष्ण। ये इधर भी चलते और इधर भी चलते, पॉलिटिक्स व्यक्ति, ये गड़बड़ है। कृष्ण समझ में नहीं आते, लेकिन राम समझ में आते सबको। कृष्ण था धार्मिक, लेकिन उत्कृष्ट असंयमी। हाँ, वो तो नियोग होता है। उत्कृष्ट असंयम की अनुभूति उस पद पर जाने के उपरांत होता ही है, और लास्ट में इनका सम्यक दर्शन छूट जाता है, नारायणों का और प्रतिनारायणों का। यही हाल है रावण की। ऐसी हालत क्यों हो गई? मत से, वहां भी घमंड था, मई 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 घमंड था, मेरा मेरा मेरा। अब ये नियोग रहते हैं, जो जीव उस प्रतिनारायण पद पर आ जाता है, जन्म लेता है, उसकी बुद्धि, उसके कर्म, उसकी ताकत उतनी ही होती है, उसकी हार भी निश्चित ही रहती है, पर होती है सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन से च्युत होने के बाद ही गड़बड़ करते हैं ये। क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते। कौन? नारायण और प्रतिनारायण। बलभद्र क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, नौ बलभद्र में से राम भी एक बलभद्र हैं, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि। देखो, राम तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लक्ष्मण क्षायोक्षम सम्यक दृष्टि थे, और लास्ट में मृत्यु के अंत में इनका सम्यक तो छूट जाता है। और जब ये नरकायु का बंद करते हैं तो संक्लेश परिणाम जब ज्यादा होते हैं इनके युद्ध आदि के काल में, तो उस समय सम्यक से च्युत होकर नीचे प्रथम गुण स्थान में आकर नरकायु का बंद करते हैं। बंद करने के बाद पुनः इनको बुद्धि आती है, हमने गलत बहुत किया, हमने गलत बहुत किया, पश्चाताप तो होता है उनको, लेकिन उस कार्य को छोड़ने के भाव नहीं होते अन्याय के। पश्चाताप है, रावण को ऐसा मत समझो कि उसको पश्चाताप नहीं था, भीतर भीतर समझता था वो, लेकिन स्वाभिमान के लिए सबको हवन कर दिया। प्रजा मर गई, उसका पाप लगा, बेटा मर गया, भाई लोग मर गए, एक भाई भाग के गया, मैं भी मर जाऊंगा तो क्या होगा? ये तो अन्याय के पक्ष में लड़ रहे हैं, मेरी क्या स्थिति होगी? मेरे को तो बुद्धि है, चलो राम की शरण में चलेंगे, न्याय के पक्ष में। किससे डरना? विभीषण मित्र बन गए राम के, खुद के भाई, लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती थी, मेरा भाई उधर है मेरा ही भाई उधर है विपक्ष में, बहुत तकलीफ होती थी उनको, लेकिन क्या करे, जानता भी था कि मेरा भाई इसलिए गया है कि मैं अन्याय के पक्ष में हूं, जानता था रावण, लेकिन क्या करे, लड़ना पड़ रहा है, अब भाई से भी लड़ो और सामने से राम लक्ष्मण से भी लड़ो। उनको मालूम ये भी था कि राम लक्ष्मण ज्यादा पड़ेंगे मेरे लिए, फिर भी लड़ना ही है, नहीं लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे अरे ये कैसे राजा, ये लड़ना ही नहीं चाहता, शरण में गया ये कहेंगे ना। तो ये स्वाभिमान जिसको जागृत होता है ना, वो स्वाभिमान के पीछे मरने तक के लिए और मरवाने तक के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको कहते हैं उन्मत्त ज्ञान, ज्ञान काम नहीं करता उस समय, यहाँ तक किया हूँ तो आगे भी करूँगा, जो होना है होने दे, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो करना ही, जो कुछ करना है स्वाहा करना है। परिवारम निरूपामिति स्वाहा, वो मर गए, सब सेनाम निरूपामिति स्वाहा, सेना मर गई, और लास्ट में स्वयं निरूपामिति स्वाहा, स्वयं ही गया। अब कौन कहने वाला है, जय लंकाधीश कहने वाला कोई नहीं बचा घमंड छोड़ो छोड़ो कह तो रहे थे, वो कहते थे, उनकी पत्नी मंदोदरी वो बार बार समझाती थी, उनके उसमें एक गुरु थे, उनके क्या नाम उनका, वो समझाते थे, बहुत शिक्षा देते थे। वो कहता था तुम मुझे शिक्षा देने आ रहे हैं, ऐसा ना हो तो इधर नहीं आना, गुरु का भी नहीं माना। और मंदोदर कहते थे गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए, गुरुओं के निर्देश मानना चाहिए। वो क्या समझाते हैं, क्या मैं राजा होकर के वो ये सब करता रहूं मेरा क्या, लोग क्या कहेंगे कि कैसा राजा मैं हम लोगों का, ये कहेंगे ना, तो कौन क्या कहेंगे, ये कह करके पाप करने वाले दुनिया में जो रहते हैं ना, वो पाप छोड़ नहीं सकते, मरने तक पाप नहीं छोड़ते, वो उसके पीछे एक उनको वो जगता है स्वाभिमान, पाप पर भी स्वाभिमान जगता है, मालूम रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन देखो अभी तक तो किया और बीच में छोड़ दिया, बस इतनी सहन नहीं कर सकते हो, किसी से कोई कहने पर सहन नहीं कर सकते, छोटी सी तो बात रहती है वो, अगर उतने में वो सुधार हो गए तो ये सारी प्रजा बच जाएगी, उनके प्राण बच जाएंगे, उनका कल्याण होगा, सामने खून खराबा सब रुक जाएगा, ये नहीं देखते वो, नहीं मैं और ये राज मेरा, मैं वापस नहीं, जो कर चुका हूँ करता ही रहूंगा। सिर्फ बात इतनी थी कि सीता को लौटा दो, क्यों लाए, मंदोदरी बार बार समझाती थी, तुम तो जहरीली नागिन को पकड़ के लाए हो, वो नागिन ऐसा है यहाँ पर जब तक है तब तक उसके कांटे भी नहीं मरेंगे हम, हाँ मंदोदरी बोलती थी, हाँ ये वही तो
एक ऐसी स्त्री को तुम लाए हैं जो धर्मात्मा है, और ऐसी स्त्री को ला करके रखना तुम्हारे लिए जहर है, जहर, उसको तुम पचा नहीं सकोगे। समझ जाना, समझ जाओ। कहते थे नहीं, हूं कह रहे तो हो गया, सब पीछे, तुम नहीं आते तो मैं जाता हूं युद्ध के लिए। उन्मत्त, उन्मत्त, उन्मत्त ज्ञान। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को आठ प्रकार के मदों से बचना चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए, घमंड से नहीं लड़ना, अहंकार से नहीं लड़ना, न्याय के लिए लड़ो, समझाओ, ज्ञान दो, फिर भी नहीं समझता है तो उसको छोड़ो, लेकिन आप अपना रास्ता, न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना। इतिहास में पुरुषों ने भी युद्ध लड़ा और स्त्रियों ने भी युद्ध लड़ा है। मंदोदरी कम थी क्या, वो कई कई कम थी क्या, युद्ध में गई थी क्या, नहीं? लड़ती थी वो, बहुत शूरवीर थी वो, युद्ध में आकर के दशरथ को संभाल लिया था, तभी तो उन्होंने वचन दिया, और वहीं से तो महाभारत शुरू हो गया, सिर्फ एक बात से, वचन दे दिया उनने, तुमने तो मेरे प्राण बचा लिए, अब तुम जो मांगना चाहो पर मांगो, मैं समय पर मांगूंगी, समय पर मांगू, ठीक है, जो चाहो जब मांगो तब मैं रेडी, वचन तो दे करके फंस गए थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति यही सदा चली आए। अटल थे, ये भी अटल और वो भी अटल, देखो कैसे रहते थे, एक राजा और एक रानी, दोनों ही अपने अपने वचनों पर बिल्कुल दृढ़, ऐसा ही होना चाहिए। धर्म की परीक्षा, धर्मात्मा की परीक्षा वही होती है, संकट में जरूर पड़ जाते हैं वो दोनों, लेकिन संकट आने पर भी धर्म नहीं छोड़ते। अब कई कई ने क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू, बहुत सोचा, चिंतन किया उन्होंने, आखिर ये सोचा कि अपने बेटे के लिए, बेटे का स्वार्थ आया, मेरा बेटा राजकुमार बन जाए एक बार, अयोध्या का राजा, राजकुमार, राजा भरत का राज घोषित हो जाए एक बार, कैसी आशा जगी। देखो उस आशा ने कितना दुखी बनाया परिवार को, 14 साल तक पूरा परिवार संकट में रहा, उसका बेटा भी भरत कई कई से कहता था तू कैसी मां, तुमने अशांत बना दिया सबको, कल के दिन और राजा राम मेरा भाई राजा बनने वाला, और मेरे को, मेरे भाई, बड़े भाई रहते हुए उनको राजा, ये कभी संभव भी है ऐसा, तुमने सोचा कैसे नहीं। बहुत अनर्थ किया, बहुत अनर्थ किया, अब तो क्या, कई 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 को भी तो सुख मिल रहा था जब तक भरत नहीं आए सामने, उनको बहुत सुख मिल रहा था, मन ही मन, मन ही मन सुख मिल रहा था। भरत आकर के कहता है तुमने जो ये किया है बहुत गड़बड़ किया है काम, सबको वनवास जाना पड़ रहा, अभी मान ले, तब बुद्धि आई, हमने गड़बड़ किया तो है, कहते हैं वो तुमको जब तक
राम संकट में रहेगा। कितना भाई भाई में प्रेम है, कितना वात्सल्य है। जब तक राम मेरा संकट में रहेगा और राम जब तक राजा नहीं बनेगा, तब तक तुझे मां नहीं कहूंगा मैं। तू नागिन है, नागिन बच्चों को जन्म दे करके जैसे बच्चों को खा डालती है, तूने मुझे भी खाया और परिवार को खाया। परिवार में अशांति तेरे वजह से हो गई। ये सब कई कई से भरत कहता है, मैं मां नहीं बोलूंगा। इतना कहते ही उसको इतना ठेस लगा कई कई को, मुख छिपा करके वो बैठ गई नीचे। अब क्या करूं, बेटा ऐसा बोल रहा है। और वो दुखी होकर के चले गए सभी, और 14 साल तक सब रोते रहे। ये कौशल्या, कैकेयी, दशरथ सब पीड़ित रहे। मछली जैसे तड़पती है, एक एक दिन काटते रहे 14 साल। ये सब कैकेयी के कारण से हुआ। लेकिन मान तो लिया उन्होंने, क्यों मानना चाहिए था। एक दासी की बातों में आकर के उस बात को मान लेना, ये भी कमजोरी है। अपने निर्णय से लेते जो अच्छा है। बुद्धि नहीं थी क्या, क्या मांगू। सोच विचार बुद्धि नहीं थी क्या, लेकिन उन्होंने आखिर स्वार्थ सोच लिया। और स्वार्थ वह अपने लिए भी नहीं। स्त्री में एक मोह होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बने। देश का राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने। कोई स्त्री ये नहीं सोचती मुनि महाराज बने। यही तो कमी है। कौशल्या जैसे कोई नहीं है। कौशल्या बहुत विवेकशील थी, राम की माँ, लेकिन कैकेयी में जरा विवेक की कमी थी, इसलिए अटक गई। वो भौतिक ख्याति में आ गई, भौतिक सुख इससे मिलेगा, वो विचार आ गए, और दूसरे के बहकाव में चली गई, वो कमजोरी रही। मंत्रानी ने ऐसा मंत्र डाला कि रात भर में उसका इतिहास ही पलटा दिया। एक ही 12 घंटे की राहत उसमें उन्होंने ऐसा मंत्र डाला, दिमाग को खराब कर दिया उनने। शायद उसका इसीलिए नाम मंत्रानी, मंत्र देती थी वो। किसी को ऐसा गुप्त मंत्र दे दिया तो वो मंत्र काम कर देता था। टाइम हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से